ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 सितंबर 2021 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून, मादा, सुनहरी मतन, इमसाल। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। जवाबी मतालिया, इब्रानियों, जबूर। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना है। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदून और बरक और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूँ। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मग़लूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगाया, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया। बस मैं अब्दुलाबाद तेरी शरीयत को मानता रहूँगा, मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूँगा। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। खुदा हमारी पनाह और कुवत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक तला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी, खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाईं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। दानियल। नबूकदनज़र बादशाह ने एक सोने की मूर्त बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगो, ऐ उम्मतो और ऐ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नै और सितार और रुबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया है गिरकर सजदा करो, और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। बस उस वक्त चंद कस्तियों ने आकर यहूदा पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने नबूकदनज़र बादशाह से कहा, अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सूबा की कारपरदाजी पर मुय्यन किया है, यानी सदरक और मेसक और अब्दनजू। उन आदमियों ने, ऐ बादशाह, तेरी तज़ीम नहीं की, वो तेरे मबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करते। तब नबूकदनज़र ने कहर और गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मैसक और अब्दनजू को हाज़िर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाज़िर किया। नबूकदनज़र ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मैसक और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते। सदरक और मैसक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज़ की कि ऐ नबूकद नज़र, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनज़र काहिर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मैसक और अब्दनजू पर मुबदल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आग मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मैसक और अब्दनजू को बांधकर आग की जलती हुई भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामा कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। तब नबूकदनज़र बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा कि क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़र्र नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत अलाजात की सी है। तब नबूकदनज़र ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ऐ सदरक और मैसक और अब्दनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक और मैसक और अब्दनजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फ्राहम होकर उन शख्सों पर नज़र की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर नहीं की और उनके सर का एक बाल भी न जला और उनकी पोशाक में मुतलक फ़र्क भी ना आया और उनसे आग के जलने की बू भी ना आती थी। ज़बूर। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा, मेरा फ़ख्र खुदा पर उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूर्या में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। मत्ती। और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, यूहन्ना, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। रोमियो। बस अब जो मसीह यसू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मिसे ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मादे में कोई ज़िंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है, क्योंकि खुदा हक़ में कुल है, इसलिए सब कुछ लामतना ही अक़ल और उसका लामतना ही इजहार है। इब्तदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह अक़ल की फतह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक़ल की ताकत को اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ اسی طرح یشوع، ایلیا اور علیشا نے بھی کیا۔ مسیحی دور کو علامات اور عجائبات کی مدد سے بڑھایا گیا۔ روح یعنی خدا نے سب کو خود سے اور خود میں بنایا۔ روح نے مادے کو کبھی نہیں بنایا۔ روح میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے مادے کو بنایا جا سکے، کیونکہ جیسا کہ بائبل واضح کرتی ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی لوگوس، ایون یا خدا کے کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ روح ہی واحد مواد ہے، یعنی دیدہ اور نادیدہ لامحدود خدا۔ روحانی اور ابدی سب چیزیں حقیقی ہیں، مادی اور عارضی چیزیں غیر مادی ہیں۔ طبی اسکول انسان کی حالت سے متعلق عقل کی بجائے مادے سے سیکھیں گے۔ وہ پھیپھڑوں، زبان اور نبض کا معائنہ کرتے ہیں، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ مادہ دوسرے مادے کے لیے کس قدر ہماہنگی یا صحت مندی کی اجازت دے رہا ہے۔ ایک مادہ دوسرے سے کس قدر درد یا خوشی، عمل یا سکونت کی اجازت لے رہا ہے۔ عقل کے حکم کو پٹھوں تک پہنچانے اور عمل کرنے کے لیے اناٹومی کو اعصاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر جب ڈوریں سکڑ جاتی اور غیر منقولہ بن جاتی ہیں تو اناٹومی کیا کہتی ہے؟ کیا فانی عقل نے اس سے بات کرنا ترک کر دیا یا انہیں کمزور ہونے کا حکم دیا؟ کیا پٹھے، ہڈیاں، خون اور اعصاب ایک لمحے میں ہی عقل کے خلاف بغاوت کر سکتے اور ذہنی مخالفت کے باوجود اکڑاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جب تک پٹھے ہر وقت خودکار رہیں گے وہ ایسے کبھی نہیں رہیں گے، کبھی ذہنی رہنمائی کے مخالف عمل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خود کی ترجیح میں سخت بن جاتے، بدنما یا متناسب ہوتے، جیسے کہ وہ خوش ہوتے یا جیسے بیماری رہنمائی کرتی، تو وہ خود کا رہنما ہوتے۔ اگر ہمیں اناٹومی سے صرف یہی سیکھنا ہے کہ پٹھوں پر حکمرانی نہیں ہوتی، تو پھر یہ جاننے کے لیے اناٹومی سے مشاورت کیوں کی جائے کہ فانی عقل پٹھوں پر کیسے حکمران ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی انگلی جلا لی ہے، یہ ایک برمحل بیان ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ برمحل، کیونکہ بشری عقل نہ کہ مادی اسے جلاتی ہے۔ پاک الہام نے ایسی ذہنی حالتیں پیدا کی ہیں جو شعلوں کے رد عمل کو قلعدم قرار دینے کے قابل ہیں، جیسا کہ بائبل میں 3 یونانی عبرانی قیدیوں کا معاملہ تھا۔ انہیں بابلیوں کی بھٹی میں ڈالا گیا، جبکہ ایک مخالف ذہنی حالت اچانک سلگن کو پیدا کر سکتی ہے۔ کرسچن سائنس کے الہامی مباباد الطبیات، جیسے کہ ریاضی میں الٹ پلٹ کرنے کے اصول سے طریقہ کار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، سچائی میں کوئی درد نہیں ہے اور درد میں کوئی سچائی نہیں ہے، عقل میں کوئی اعصاب نہیں، اعصاب میں کوئی عقل نہیں، عقل میں کوئی مادہ نہیں اور مادے میں کوئی عقل نہیں، زندگی میں کوئی مادہ نہیں اور مادے میں کوئی زندگی نہیں، اچھائی میں کوئی مادہ نہیں اور مادے میں کوئی اچھائی نہیں۔ سچ اور غلطی کے مابین فرضی جنگ روحانی حواس کے ثبوت اور مادی حواس کی گواہی کے مابین محض ایک ذہنی تصادم ہے، اور روح اور بدن کے مابین یہ جنگ الہی محبت کے فہم اور اس پر ایمان کے وسیلہ تمام تر سوالات کو حل کر دے گی۔ الہی محبت جس نے زہریلے سانپ کو بے ضرر بنایا، جس نے آدمیوں کو ابلتے ہوئے تیل سے، بھڑکتے ہوئے تندور سے، شیر کے پنجوں سے بچایا، وہ ہر دور میں بیمار کو شفا دے سکتی اور گناہ اور موت پر فتح مند ہو سکتی ہے۔ اس نے یسوع کے اظہاروں کو بلا سبقت، طاقت اور محبت سے سرتاج کیا۔ سائنس کے اصولوں کو عمل میں لاتے ہوئے مصنف نے تیز اور دائمی بیماری کی شدید صورتوں میں صحت مندی بحال کی ہے۔ رتوبتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ڈھانچے کو جدید کیا گیا ہے، छोटे अज़ा को बड़ा किया गया है, जोड़ों की अकड़न को मुलायम किया गया है, बोसीदा हड्डियों को सेहतमंद हालत में बहाल किया गया है। मैंने वहाँ बहाली का काम किया जिसे फेफड़ों के मवाद की कमी कहा जाता है, और सेहतमंदाना तंजीम का क़याम अमल में आया जहाँ बीमारी नामियाती थी। क्रिश्चन साइंस नामियाती बीमारी को इतने ही यकीन के साथ शिफा देती है जितने यकीन से फाल होने वाले को शिफा देती है, क्योंकि आला असूल को जाहिर करने के लिए सिर्फ क्रिश्चन साइंस के इलाही असूल की ज़रूरत है। बीमारी के पहले या बाद वाले मरहले पर अंधा और पुरसकून एतमाद करने की बजाय इनके खिलाफ बगावत में उठ खड़े हों, इस यकीन को ख़त्म कर दें कि आप उस एक दाखिल होने वाले दर्द का इलाज कर सकते हैं जो अक़ल की ताकत से तल्फ नहीं किया जा सकता, और यूं आप जिस्म में दर्द के बढ़ने को रोक सकते हैं। खुदा का कोई कानून इस नतीजे में रुकावट नहीं बनता। जब जिस्म ये कहता हुआ लगे कि मैं बीमार हूं, तो खुद को मुजरम होने का एहसास न होने दें। चूंकि मादा बात नहीं कर सकता, तो जो बोलता है वो यकीनन फ़ानी अकल है, इसलिए मुखालफत के साथ ईमान का सामना करें। अगर आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं, तो आपको गलती का एहसास है, तो आपका दुश्मन आपको जज फ़ानी अकल के पास ले जाएगा और जज आपको सज़ा का हुक्म देगा। बीमारी में खुद को कुछ जाहिर करने और अपने नाम का ऐलान करने की जहानत नहीं है, फ़ानी अकल अकेली इसे खुद सज़ा सुनाती है। इसलिए बीमारी के साथ अपनी खुद की शरायत बांधें और खुद के साथ और दूसरों के साथ आदल बने। अपने इस फहम में मजबूत रहें कि इलाही अकल हुकूमत करती है, और ये कि साइंस में इंसान खुदा की हुकूमत की अकासी करता है। इस बात का खौफ बिल्कुल न रखें कि मादा किसी किस्म के कानून के नतीजे में दर्द, सूजन और सोजश का शिकार हो सकता है, जबकि ये खुद वाजह बात है कि मादे में दर्द हो सकता है, न सूजन हो सकती है। आपका बदन किसी दरख्त से लगे हुए ज़ख्म या ऐसी बरकी तार खींचने की निस्बत परेशानी और ज़ख्मों से ज़्यादा तकलीफ़ उठाएगा जो फ़ानी अकल के लिए नहीं है। इंसान कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि अकल कभी बीमारी नहीं होती और ना ही मादा। आजमाइश करने वाला और आजमाया जाने वाला, गुनाह और गुनाहगार, बीमारी और उसकी वजह, दोनों झूठा ईमान है। बीमारी में पुरसकून रहना अच्छा है, पुरउम्मीद होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी हकीकी नहीं और के सच्चाई इसकी दिखाई देने वाली हकीकत को तबाह कर सकती है, सबसे बेहतर है, क्योंकि ये समझ आलमगीर और कामिल इलाज है। मादा इंसान के लिए कोई शरायत नहीं बना सकता। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की चीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔